ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सभी राष्ट्र सेवकों के कार्य संपादन और व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दहाल प्रचंड का कथन। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2081 के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा रही जारी। जरूरत और औचित्य के आधार पर बजट का आवंटन करने, लोगों में निराशा खत्म कर विकास के काम पर जोर देने की सांसदों की मांग। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तियों के एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का कथन। और कुवैत में विदेशी श्रमिकों की एक इमारत में आग लगने से 41 से अधिक लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दहाल प्रचंड ने अगले आर्थिक वर्ष से सभी राष्ट्रीय सेवा कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने और लागू करने का निर्देश दिया। आज सिंहदरबार में आयोजित तीसरी तिमाही की प्रगति समीक्षा एवं मंत्री स्तरीय विकास समस्या निवारण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सभी राष्ट्र सेवकों के कार्य संपादन और व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आर्थिक वर्ष 2081-82 की नीति तथा कार्यक्रम और बजट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। निर्धारित समय पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की सक्रियता को आवश्यक बताते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि कार्य स्तर के अनुरूप कर्मचारियों की क्षमता का विकास किया जाएगा तथा प्रेरणा एवं मनोबल बढ़ाया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक और कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय से संबंधित विविध विषय पर विचार विमर्श हुआ है। विनियोजन विधेयक पर मंत्रालय स्तरीय चर्चा में सांसदों ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में जरूरत और औचित्य के आधार पर बजट आवंटित किया जाना चाहिए और लोगों की निराशा को खत्म कर विकास के काम पर जोर दिया जाना चाहिए। सांसदों ने शहरी विकास मंत्रालय के तहत बजट को गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के उत्थान और स्थानीय निवास के प्रबंधन, शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण की रक्षा करने, आसपास के क्षेत्रों में जंगलों को विकसित करने, कृषि योग्य भूमि की रक्षा करने पर जोर देने, शहरी क्षेत्रों में नदियों और नालों के संरक्षण पर ध्यान देने की बात कही। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, मॉनसून के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से पर्याप्त तैयारी करने की ओर सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसदों ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की व्यवस्था करने और विमानस्थल के संचालन के लिए आवश्यक रकम आवंटित करने का सरकार से अनुरोध भी किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पॉडेल स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी और दूतावास के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति पॉडेल आज यानी कि जेठ 30 गति स्विस महासंघ के राष्ट्रपति वियोला आमहर्ट से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसी जेठ 31 गते यानी कल गुरुवार राष्ट्रपति पॉडेल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें उच्च स्तरीय सत्र के तहत सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के उद्घाटन मंच को प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। जेठ 31 गते के दिन ही राष्ट्रपति पॉडेल से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पॉडेल भ्रमण संपन्न कर आषाढ़ 5 गते स्वदेश लौटेंगे। उपेंद्र यादव को निर्विरोध जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव समिति के मुताबिक जनकपुर में आयोजित राष्ट्रीय महाधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र यादव अकेले उम्मीदवार थे और उन्हें निर्विरोध चुना गया। महाधिवेशन से 201 सदस्य केंद्रीय कमेटी और 20 सदस्य पदाधिकारी निर्वाचित किए जाएंगे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात पर जोर दिया है। नेपाल समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में वैकल्पिक राजनीतिक की तर्कसंगतता और संभावना विषय पर आयोजित बातचीत में भाग लेने वाले दलों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नई शक्तियों को विचारों और मुद्दों के आधार पर एकजुट होना चाहिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार के सक्रिय होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज पोखरा में समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्की द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के लिए सरकार को देश के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करने और लोगों को बदलाव का एहसास कराने में सक्षम होना चाहिए। अध्यक्ष नेपाल ने बताया कि पार्टी के 10वें महाधिवेशन की तैयारी के लिए 27 सदस्यीय मस्यौदा समिति का गठन किया गया है और महाधिवेशन में राजनीतिक, संगठनात्मक, समाजवाद और पार्टी विधान से संबंधित मुख्य विषय पर चर्चा की जाएगी। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला ने कहा है कि देश की राजनीति अत्यंत तरल अवस्था में है, इसलिए कांग्रेस सरकार तत्काल सरकार में शामिल नहीं होगी। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता कोइराला ने कहा कि देश में सुशासन और स्थायित्व कायम करने के लिए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, स्थायी सरकार और नीति आवश्यक है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि स्थिर सरकार न बनने से देश विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पा रही है। आज नेकपा एमाले ललितपुर महालक्ष्मी नगर कमेटी के दूसरे अधिवेशन उद्घाटन में महासचिव पोखरेल ने ये बात कही। नेपाल सरकार ने आषाढ़ 7 यानी कि 21 जून को स्कूल स्तर पर विश्व योग दिवस मनाने का फैसला किया है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ की अध्यक्षता में आज हुई मूल समारोह समिति की बैठक में महिला सशक्तिकरण के लिए योग नारे के साथ स्कूल स्तर पर इस दिन को मनाने का निर्णय किया गया है। मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय के अनुसार प्रदेश और स्थानीय तहों पर योग दिवस मनाने के लिए पत्राचार किया गया है और साथ ही शिक्षा, विकास और समन्वय इकाई के माध्यम से स्कूल स्तर पर दिवस मनाने का अनुरोध करने का बैठक ने निर्णय किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना में 41 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीबीसी को बताया है कि मरने वाले लोगों में अधिकतर भारतीय नागरिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। सानिया अखबार टाइम्स ऑफ कुवैत के संपादक रेवेन डिसूजा ने बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा को बताया कि कुवैत में आग लगने की घटनाएं पहले भी होती रही है, इतने लोगों की मौत पहले कभी नहीं हुई थी। इस हिसाब से ये बहुत बड़ी घटना है। अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कुवैत के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल ईद अल अवेहान ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि ये आग बहुमंजिला इमारत में बुधवार सुबह स्थानीय समय अनुसार 6 बजे लगी। उन्होंने ये भी बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और राहत कार्य का काम जारी है। अधिकारियों ने बताया कि कुवैत के मगाफ इलाके के एक 6 मंजिला बिल्डिंग के किचन से आग की शुरुआत हुई। इस इमारत में अधिकतर प्रवासी मजदूर रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले में से 5 भारतीय नागरिक भी शामिल है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी राष्ट्र सेवकों के कार्य संपादन और व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड का कथन। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2081 के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा रही जारी। जरूरत और औचित्य के आधार पर बजट का आवंटन करने, लोगों में निराशा खत्म कर विकास के काम पर जोर देने की सांसदों की मांग, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का कथन, और कुवैत में विदेशी श्रमिकों की एक इमारत में आग लगने से 41 से अधिक लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।